जी बिस्मिल्लाह कीजिए। जी
अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम
सर, मेरा सवाल दो थे सर। एक तो ये कि फिरौन को जिल औताद यानी मेखों वाले क्यों कहा गया है, किस लिहाज से?
जी।
और दूसरा सवाल ये था सर कि जो तरसाहटें होती हैं हमारे अंदर, तो ये तरसाहटें हमारी शख्सियत पर किस तरह से असरअंदाज होती हैं या ग्रोथ में कैसे रुकावट बनती हैं?
पहले सवाल का जवाब यह है, जिल औताद यानी सतूनों वाले, तो अहराम मिस्र को देखें।
जी जी सर।
अब असल में ये इल्म जो था ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको दिया कि अगर जमीन पे हम इस तरह की इमारत बनाएं, ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं तो उसके अंदर रखी हुई चीज जल्दी खराब नहीं होती। क्योंकि देखे ना, जब हम किसी चीज को बाहर रखते हैं आम हालात में, तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी एनर्जी लूज करती है और चीज बासी हो जाती है, रॉट कर जाती है, उसको जंग लग जाता है।
जी सर, ऐसा ही है।
लेकिन वो जो स्ट्रक्चर दिया गया तिकोन का और वो स्क्वायर का कॉम्बिनेशन है, उसमें खास जाविया है। उस जाविये की वजह से जमीन में ये जो मैग्नेटिक फील्ड है,
जी सर,
ये जब उस स्ट्रक्चर में से गुजरती है तो चीज में से खारिज होने वाली रोशनियां क्या होता है, वो चीज में वापस जज़ब होती रहती
है। जी सर।
इस वजह से फराइने मिस्र ने इस टेक्निक को अपने मकबरों की तामीर के लिए इस्तेमाल किया कि हमारी लाशें खराब ना हो।
जी सर।
अब औसाद का मतलब है गड़ा हुआ, यानी एक सतून।
जी सर।
तो वो सतूनों वाले यानी औताद कहते हैं जो चीज मजबूती से अपनी जगह जमी हुई हो।
जी सर।
इस एक लफ्ज की शरह में पूरा अहराम मिस्र की साइंस छुपी हुई है।
सही हो गया सर।
तो फिरौन को जिल औताद इसलिए कहा कि फराइने मिस्र, फिरौन एक बादशाह नहीं था, ये पूरी एक तसलसल से हजरत यूसुफ के बाद जो फराइने मिस्र बने या मिस्र के बादशाह बने, उन्होंने ये लकब अपने लिए अपनाया।
जी जी सर। जी।
और ये पूरी एक चेन ऑफ फैरोज है, यानी कि फराइन मिस्र की पूरी एक चेन चलती है। फिर वो एक फिरौन मिस वो था जिसका मुकाबला हजरत मूसा से हुआ, या जो हजरत मूसा के दौर में था।
जी जी सर।
जिसने बच्चे कत्ल किए और ये हुक्म सादर किया कि इनकी औलादें कत्ल कर दो वगैरह वगैरह। ठीक है।
जी जी सर।
तो ये बात वाज़े हो गई, ज़िल औताद से मुराद असल में फराइन मिस्र का वो दौर पूरा जो अपने आप को बड़ा मुस्तहकम गाड़ के बैठे हुए थे।
जी 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 सर। जी।
वाज़े हो गए ये सारे एंगल।
जी, जी सर, ये वाज़े हो गया।
अब आ जाती है बात फ्रस्ट्रेशंस की।
जी सर।
फ्रस्ट्रेशन का ऑपोजिट क्या है? सेटिस्फेक्शन।
जी सर।
सैराबी का ऑपोजिट खुश्क साली है। जब इंसान की तबीयत में मकासद और तकाजे मरकूज कर दिए गए, तो अगर तकाजों की तकमील नहीं होगी तो तस्कीन नहीं मिलेगी, तो फ्रस्ट्रेशन होगी, जिसकी वजह से आप मकसद नहीं पूरा कर सकते। बड़ी सिंपल सी मिसाल है कि बच्चा अगर स्कूल जाए और उसे आप नाश्ता कराए बगैर भेज दें, अगर उसका ये भूख लगी होगी तो वो स्कूल में फोकस कर सकेगा?
नहीं नहीं सर, कभी भी नहीं।
इसी तरह अगर एक बंदे को पेशाब आ रहा है तो अगर वो नमाज पढ़ने खड़ा हो जाएगा तो उसका ध्यान किधर रहा?
सही बात है सर।
लेकिन अगर वो रफ़ा हाजत करने के बाद तहारत करके वजू करके अब आके इत्मीनान से नमाज पढ़ेगा तो क्या होगा? तो ये सारी मिसालें फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करने की वजह बनी क्या? इन सारी मिसालों में मतलब तकाजे की तकमील ना होने से फ्रस्ट्रेशन होती है।
बिल्कुल ऐसा है सर।
फ्रस्ट्रेशन का मतलब है कि तकाजे की तकमील ना होना।
बिल्कुल ऐसा ही है सर।
जब तकाजे की तकमील नहीं होगी तो आपको तस्कीन नहीं मिलेगी। तस्कीन नहीं मिलेगी, आप अपने मकसद को अचीव नहीं कर सकेंगे।
सही हो गया सर, बिल्कुल ठीक।
अब इसी बात को कहा जाता है कि भाई हमें रूह के तीनों दर्जों को केटर करना है, हैवानी सतह पे भी, इंसानी सतह पे भी और रूहानी सतह पे भी।
जी सर।
यानी अगर जिस्मानी तकाजे नज़रअंदाज होंगे तो फ्रस्ट्रेशन होगी
जी।
इसी तरह रूहानी ज़हनी तकाजे अगर इग्नोर हो गए तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन होगी कि नहीं होगी?
बिल्कुल होगी सर।
और इसी तरह जब रूहानी तकाजे नज़रअंदाज होंगे तो फ्रस्ट्रेशन रूहानी सतह की होगी। तो इसलिए जरूरी है कि फ्रस्ट्रेशन के लफ्ज को हजफ कर दें आप अपनी डिक्शनरी में से। फ्रस्ट्रेशन की बुनियाद क्या है? फ्रस्ट्रेशन की बुनियाद यह है कि मैं चीज चाहता हूं और अपनी मर्जी से करना चाहता हूं और अपनी मर्जी की करना चाहता हूं और अपनी मर्जी के मुताबिक करना चाहता हूं। अगर वो मेरी मर्जी की नहीं है, मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसी नहीं हो रही, तो मैं क्या फील करता हूँ? फ्रस्ट्रेटेड। तो गोया कहानी कहाँ आके खत्म हुई? मर्जी पे। और ये बात मैं मजाहन कई दफा अर्ज कर चुका हूँ कि मर्जी का लफ्ज जो है ये मर्ज से है। मर्जी अरबी में कहते हैं मेरा मर्ज। तो फ्रस्ट्रेशन क्या हुई? अपनी मर्जियां करने की काविश करना।
बिल्कुल सही हो गया।
अब जाहिर है कि आप और मैं खुदा तो है नहीं कि हम जो चाहें वही हो जाए।
बिल्कुल ऐसा ही है।
अगरचे अल्लाह ने इंसान को ये अधिकार दिया है, इख्तियार दिया है कि जिस चीज का वो इरादा करता है और जब वो उसको कहता है कि हो जा तो वो हो जाती है, लेकिन उसके कोई आदाब हैं, उसके कोई कवानीन हैं, कुछ तरीके हैं। ये थोड़ा ही है कि बस ऐरा गैरा नथू खैरा जो भी बोलेगा वो हो जाएगा। वो तो इंसान होना शर्त है, पहले बंदे का पुत्र पे बन। अब बंदे का पुत्र बनने के लिए जरूरी है कि आप फ्रस्ट्रेशन से अबब हो जाए, आप अपने अंदर इत्मीनान और शांति उतार लें। उसका आसान तरीन तरीका क्या है? सूफिया कराम ने तीन लफ्ज बोले, कम खाना, कम बोलना, कम सोना।
जी सर।
हम यहाँ सोने चांदी के चक्कर में पड़ गए।
ऐसा ही हो गया सर। आपने यहाँ पे जो तकाजों की तीनों लेवल की बात की, सर जिस्मानी समझ में आता है, ज़हनी भी समझ में आ जाता है। अब ये जो रूहानी तकाजा, अब लाजमी वो उस लेवल
बड़ी सिंपल सी बात है। रूह से क्या मुराद है? रूह एक एनर्जी है।
एनर्जी।
अब वो एनर्जी अगर पीछे से कट ऑफ हो जाए तो आगे वो क्या काम करेगी? तो रूह का सबसे बड़ा तकाजा अपने मस्दर से जुड़े रहना है।
सही हो गया सर। ओके।
रूह का सबसे बड़ा तकाजा अपने मालिक, अपने खालिक, अपने आका, अपने रब का इरफान हासिल करने, उसको जानना है, क्योंकि उसकी तख्लीक इसीलिए की गई है। यानी अगर आपके अंदर जब ये तकाजा आता है, ये सवाल आता है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे किसने बनाया, मुझे क्यों बनाया
जी,
तो ये सारी बातें असल में रूहानी तकाजे की तरफ इशारे कर रही हैं।
बिल्कुल सर। ओके सर, सही हो गया।
अब इसको एक और एंगल से समझ लें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तीन सत्य हैं, इल्म, फिकर और अमल की। अमल के दर्जे को हम जिस्मानियत कहते हैं, जिस्मानी तकाज़े। ये सारे अमल के दर्जे हो गए। फिकर के दर्जे पे ये ज़हनी तकाज़े हो गए।
जी सर।
अब ज़हनी तकाज़ों में से एक तकाज़ा है गौर व फिकर करना।
जी सर, बेशक, यही।
किसी चीज़ को ज्यादा बेहतर जानना। देखे ना, हम किसी से मिलते हैं तो पहले तो हम पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है। हम पूछते हैं आप कौन है, वो अपना नाम बताता है, वो अपना तारुफ कराता है, मैं फलां का रिश्तेदार हूँ या फलां आपके दोस्त ने मुझे भेजा है, उसका ये नाम है, या मैं फलां मकाम से आया हूँ, मेरा ये मकसद है, वगैरह वगैरह। यानी ये हमारा बुनियादी जिस्मानी सतह पे जानकारी का अमल शुरू हो जाता है। फिर हम जूं जूं रफ्ता रफ्ता उसे जानते हैं। अब जब आप स्कूल गए, कॉलेज गए, वहाँ क्लास फेलो से मिले, किसी कोई आपसे मिला, किसी को आप अच्छे लगे, कोई आपको अच्छा लगा, फिर आप उसको मजीद जानने के चक्कर में पड़ गए। जो जब आप उसकी तबीयत से आशना हुए तो दोस्ती हो गई।
बिल्कुल ऐसा ही होता
था। बहने ही अब ये दो तकाजे क्या हो गए, अमल का दर्जा, फिकर का दर्जा और तीसरा दर्जा इल्म का दर्जा। तो रूह का असल तकाजा है इल्म हासिल करना।
ओके सर।
इल्म को बरतना।
सही हो गया सर।
इल्म हासिल करना और उसको बरतना। आलिम कौन है और अलीम कौन है, वो अल्लाह की जात है। अल्लाह की जात की सिफात में से हैं आलिमुल गैब व शहादा व जालिका तकदीरुल अज़ीज़ुल अलीम। यानी इल्म को जानने वाला और इल्म को बरतने वाला, ये अल्लाह की सिफात हुई। तो रूह जो है वो सिफात को जानना चाहती है, यानी इल्म हासिल करना चाहती है। तो ये जो आपके अंदर सवाल उभरते हैं, ये आपके अंदर जो सवाल पैदा होते हैं या उभरते हैं, ये सब रूह की तहरीकात ही तो हैं।
सही हो गया सर।
कितना देखे ना, वही तीन लफ्ज, इल्म, अमल और फिकर। इल्म, फिकर और अमल तरतीब ये, माफी चाहता हूँ। यानी इल्म का दर्जा जो है ये रूह का दर्जा है, फिकर का दर्जा जहन का दर्जा है, अमल का दर्जा सारा जिस्म और जिस्मानी निजाम से मुतालिक है।
जी सर।
तो जब तक इल्म नहीं होगा, आप उसको प्रोसेस नहीं करेंगे, यानी उस पर तफक्कुर नहीं करेंगे, उस पर फिकर नहीं करेंगे, तो अमल ठीक कहाँ से हो जाएगा।
जी, वो
तो ये बुनियादी तकाजा हुआ, रूहानी तकाजा हुआ। फिर उस पे जब आपने जहन को काम में लाए तो ज़हनी तकाजों की तकमील भी हुई। जब ज़हनी तकाजों की तकमील होगी तो अमल ठीक होगा। तो ये एक साइकिल बन गया। जब अमल ठीक होगा आपको तस्कीन मिलेगी, आपका जहन काम करेगा, जब जहन काम करेगा वो शांत होगा तो रूह काम करेगी। यानी कि फिर वो इल्म में और ज्यादा गहराई पैदा होगी।
ओके सर, सही हो गया।
अब इसी को सूफिया कराम ने रूह इंसानी, रूह हैवानी, रूह इंसानी और रूह आजम कहा। और यही चक्कर सारा दिन हम अपनी आम जिंदगी में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है इसको इस टर्मिनोलॉजी के साथ समझने की तो हम कहते हैं ये पता नहीं क्या चीजें हैं, ये कौन सी बातें हैं, कौन सी कहानियां हैं।
ठीक हो गया सर।
बहुत शुक्रिया आपका जी कि आप ये ठीक हो गया, अल्लाह खुश रखे आपको। इसको ठीक करार देना जाहिर है कि बहुत ही मैं शुक्रगुजारी का इजहार करूंगा ना।
बेशक सर, अल्हम्दुलिल्लाह
जी।
वालेकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम।
सर मुझे शादी में एक सवाल आपने किया था, फिरौन का किया था सर, इसमें ऐसे ही पता नहीं ये बात होते होते जहन में बात आई तो पूछ रही हूँ कि सर जैसे एक हमने पढ़ा था ना, एक सर्कुलर हमारी होती है जहनी हालत जिसमें हम यानी अल्लाह से ताल्लुक सर्कुलर उसमें होते हैं, फिर बीच में वो तिकोनी होती है जहाँ इंसान ठहरता है। तो सर मुझे ये लगा कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम थे उन्होंने प्रिजर्व करने के पॉइंट से ये बताया था ना कि इस तरह की बिल्डिंग बनाए जिसे अनाज को प्रिजर्व किया जाए, ठीक है
जी,
आपने जिस तरह भी बताया। अब मुझसे सवाल, तो सर मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या इंसान का भी ऐसा ही है कि जैसे उसकी वो जो काम करने की जो वो है कि वो स्टार्ट लेता है फिर रुकता है तो वो ट्रायंगुलर उसमें आता है, तो यानी वो उसमें एक तरह का बंद हो जाता है या अपने आप को यानी वो जिबिलत में आ जाता है, प्रिजर्व कर लेता है अपनी बातों को?
नहीं, इसको इधर ना जोड़े, इसको यहाँ ना जोड़े। देखें बात ये है कि आप पहले तो दायरे और मुसल्लस को अच्छी तरह समझ लें। इंसान बयक वक्त दायरे और मुसल्लस दोनों की तख्लीक है, इसके अंदर ये दोनों हरकात काम कर रही हैं। ये असल में दायरा और मुसल्लस क्या है? हरकात है,
हरकात है जी जी बिल्कुल।
वो हरकत जो मुसलसल जारी रहती है
जी सर,
और एक दायरे की सूरत में क्या, अगर आप लकीर को दायरे में देखें तो क्या है, वो मुसलसल हरकत में। लेकिन आप मुसलस को देखें तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगी और वहां से रुख बदलेगी,
फिर दूसरा
तीसरे पॉइंट पे जाके वो फिर रुख बदलेगी, ठीक है
जी।
तो क्या हुआ कि ये एक हरकत ऐसी है जो मुसलसल चल रही है और दूसरी जो है वो कदम कदम पे रुख बदल रही है,
रुख बदल रही है जी सर।
अब ये क्लियर हो गया, दायरा क्या है? मुसलसल हरकत,
मुसलसल हरकत
और वो रुक के। अब मादी जोन में हमारी हरकत मुसलस की है, नजर किसी चीज पे पड़ती है टकरा के वापस आती है, ये मुसलस की हरकत हो गई,
ठीक हो गया,
यानी एंगल्स बन गए, इसमें
एंगल्स बन गए,
जाविया नजर बन गया, जाविया फिकर बन गया, ये जहां जाविये का लफ्ज आ गया वहीं पे मुसलस आ गया,
जहां जाविया आया वहीं जी सर, ठीक है, एक पॉइंट पे रुका और पलटा जी।
मतलब है साइड बदली, रुख बदला या पलटा?
जी जी रुख बदला जी सर, बिल्कुल
ठीक हो गया,
सही है जी,
ये सब मुसलस है,
ठीक हो गया।
और वो हरकत जो मुसलसल चल रही है जो कहीं रुकती ही नहीं, वो दायरा है। अब मिसाल की बात है कि हजूर मुर्शिद करीम ने फरमाया भाई या हय्यो या कय्यूम पढ़ने वाले पे दायरा गालिब हो जाता है
जी सर।
अब जरा इसको बारीकी से समझे, अब गाड़ी चल रही है, उसका टायर जो है वो दायरे में घूम रहा है अपनी, अब उसे जैक पे खड़ा कर दें वो घूमता तो रहेगा लेकिन सड़क पार यानी के स्पेस नहीं लिपटेगा
जी, बिल्कुल,
यानी फासला तय नहीं होगा,
फासला तय नहीं होगा जी, बिल्कुल
ठीक हो गया, यानी के वो दायरे की हरकत जो है वो स्पेस को कवर कर रही है और स्पेस ट्रायंगल है, ये दो मिसालें हो गई,
हो गई।
अब एक आपके जहन की हरकत है और एक आपके आजा की हरकत है, जरा सा गौर करें कि जहन की हरकत मुसलसल चलती है और आजा की हरकत एक काम करती है फिर हाथ आगे जाता है गिलास पकड़ता है वापस पलटता है, तो ये सब मुसलस है। गौर करें, यानी कि मुसलस की हरकत की बुनियाद असल में दायरे की हरकत है। अब जहन का दायरा हरकत में रहेगा तो जिस्म का दायरा मुसलस में काम करेगा, ठीक हो गया। اب ذہن کا دائرہ محدود ہے، روح کا دائرہ لا محدود ہے.
جی ہاں،
وہ زیادہ مستقل، زیادہ پائیدار اور زیادہ بہتر حرکت میں ہے. وہی تین چیزیں ہو گئی نا.
جی جی،
کھیل سارا میں نے آپ کو بہت سادہ الفاظ میں عرض کر دیا کہ پرکار لے کے آپ دائرہ لگائیں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. دائرہ مسلسل ایک سیدھی حرکت ہے، گولائی میں گھومتی ہوئی.
بالکل.
لیکن مسلس بنانی ہو تو کیا کریں گے کہ فٹا رکھ کے پہلے ایک لکیر لگائیں گے، پھر دوسری لگائیں گے، پھر ان دونوں کو آپس میں نیچے سے بیس پہ ملائیں گے.
بالکل بالکل.
یعنی ایک حرکت میں ٹوٹ پھوٹ ہے یا رکاوٹ ہے، پھر وہ رخ بدلتی ہے. وہ آپ دیکھیں نا، ہنڈیا پکا رہے ہیں
کیونکہ ذہن کی چینجنگ نا سر.
جی جی، مطلب ہے کہ یہ میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ حرکت، میں نے کیا لفظ بولا ابتدا میں، کہ دائرہ بھی ایک حرکت ہے، مثلث بھی ایک حرکت ہے. یہ حرکت جو مستقل اور مسلسل ہے وہ دائرہ کہلا رہی ہے، اور وہ حرکت جو ایک فاصلہ چلتی ہے، رکتی ہے، رخ بدلتی ہے، دوسرے رخ جاتی ہے، پھر وہاں سے رخ بدلتی ہے، تیسرے رخ جاتی ہے، پھر وہاں سے رخ بدلتی ہے، چوتھے رخ جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اگر ہم غور کریں تو ہماری تمام جسمانی حرکات مثلث ہیں.
بالکل، ہماری ہر حرکات.
لیکن ان کے پیچھے کام کرنے والے ذہن کی حرکات کو ہم دائرے کی حرکات کہیں گے، اور ذہن کی حرکات کے پیچھے جو حرکت، بڑی حرکت ہے، وہ اصل میں اصلی بڑا دائرہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟
جی سر، بہت ٹھیک ہوا. بہت اچھا سر، بہت شکریہ.
اگر ہم اس طرح سے لفظوں کی بنیاد کو پکڑ لیں، جڑ کو پکڑ لیں، اور اس کو اپلائی کریں ہر چیز پہ، تو آپ حیران ہوتے رہیں گے کہ بھئی کتنا صحیح بات ہے، کتنی سمپل بات ہے کہ دائرے کی حرکت ہے، مثلث کی حرکت ہے، مثلث بھی حرکت ہے، دائرہ بھی حرکت ہے. مثال آپ سانس کی حرکت دیکھیں، اب سانس لیتے ہیں نکالتے ہیں، سانس لیتے ہیں نکالتے ہیں، تو یہ دائرہ نہ ہوا؟
بالکل ہوا سر، بالکل ہوا، بالکل صحیح.
لیکن آپ کے اب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ کی ساری موومنٹس جو ہیں وہ مثلث ہیں.
مثلث ہیں جی سر.
آپ روٹی توڑتے ہیں، اس کو نوالے کو پلیٹ میں لے جا کے ڈبوتے ہیں، وہاں سے اس کا سالن لگاتے ہیں، اسے منہ تک لاتے ہیں، مثلث ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ لیکن اس کے پیچھے تقاضا جو ہے وہ دائرہ ہے، بھوک
دائرہ ہے. جی سر، تقاضا
وہ مسلسل حرکت میں ہے. ٹھیک ہے
جی سر.
جب آپ کے تقاضے کی تکمیل ہو جاتی ہے تو آپ کا ذہن جو ہے وہ دیگر کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے، وہ اس کی حرکت جاری رہتی ہے.
جی
سر، بالکل ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ سر، تھینک یو سو مچ. جی جناب.
السلام علیکم سر.
جی وعلیکم السلام.
سر میرا سوال ہے، مرادبے کی چار کیفیتیں بتائی ہیں اپنے، غنوج، بروج، مکاشفہ اور شہود، تو ان کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں.
جی، غنود کہتے ہیں غنودگی کو، یعنی جب آپ کے مادی حواس سسپینڈ ہونا شروع ہو جائیں. جب آپ مراقبہ کرنے بیٹھیں اور آپ کا جسم غیر محسوس ہونے لگے، یعنی جسم کی طرف سے توجہ ہٹ جائے، تو یہ غنود کی کیفیت ہے. چونکہ یہ نیند سے بہت مشابہت رکھتا ہے اس لیے لفظ غنودگی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. غنودگی کی کیفیت جو ہے وہ اس کی ابتدائی کیفیت ہے. ہم پہ ذرا سی تاری ہوتی ہے ہم گھبرا جاتے ہیں کہ جی مجھے تو نیند آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اس کے بعد ورود تاری ہوتا ہے. ورود کا مطلب ہے وارد ہونا. غنود کے بعد ہے ورود. ورود کا مطلب ہے کہ آپ اس نیند کی کیفیت میں کچھ دیکھتے ہیں, کچھ محسوس کرتے ہیں. کوئی چیز وارد ہوتی ہے لیکن سمجھ نہیں آتی کہ کیا دیکھا. کچھ کچھ ہوا تو تھا. ٹھیک ہے, اگر ہم اس پہ مزید کنسسٹنٹ رہتے ہیں, مزید اس پہ جمے رہتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ جو چیز ہم نے دیکھی ہمیں اس کی تھوڑی بہت سمجھ آنے شروع ہوتی ہے. یہ جو ہمیں چیز دکھی ہم اس کو دیکھنے لگ گئے اور اس کا مشاہدہ کرنے لگ گئے تو یہ شہود کہلائے گا. اسی شہود کا ایک نام مکاشفہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جو کچھ آپ نے دیکھا وہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہوا. اگر وہ سمجھ میں آنا شروع ہوا تو یہ مراقبہ شروع ہو گیا, کیونکہ اب اس پہ غور و فکر شروع ہو گیا. یہ انہوں نے چار درجے بتائے. ٹھیک ہو گیا. پھر مراقبے میں ایک درجہ سیر کا آتا ہے, یعنی جب آپ روحانی طور پہ سیر شروع کر دیتے ہیں, یعنی آپ کی روح سیر کرتی ہے اور آپ اس وقت باشعور ہیں, یعنی آپ کو شعور ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں یا میری روح کیا کر رہی ہے. پھر ایک درجہ اس کے بعد ہے, وہ فتح کا درجہ ہے, یعنی پھر سب کچھ ذہن کھل جاتا ہے. شعور کے ساتوں درجوں پہ آپ کو کمانڈ آ جاتی ہے یا وہ کھل جاتے ہیں. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سوتے میں جاگنا سیکھیں. ٹھیک ہے, جب آپ غنود کی حالت میں تھوڑا سا اویئر ہوں گے کہ ہاں ٹھیک ہے میں غنود میں ہوں, ذہن شانت ہوتا جا رہا ہے, پھر ورود کی حالت تاری ہوئی, کوئی چیز دکھی, کم دکھی, زیادہ دکھی, پورا منظر دکھا, نہ دکھا, وغیرہ وغیرہ, مراقبے سے فارغ ہو کے آپ نے غور کیا مجھے کچھ دکھا تو تھا, کیا تھا آپ یاد کر رہے ہیں. پھر ایک سٹیٹ یہ آئی کہ آپ نے دیکھا, فرض کریں کہ آپ کو مراقبے میں, یعنی کہ جب آپ مراقبہ کرنے بیٹھے, غنود کے بعد ورود, ورود کے بعد جب آپ کو شہود کی کیفیت حاصل ہوئی, آپ نے دیکھا کہ آپ گنبد خضرا کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے ذہن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہے, محبت ہے, ان کے توسط سے آپ کے ذہن میں گنبد خضرا کی تصویر ابھر آئی. پھر مزید آگے بڑھے اور آپ نے دیکھا کہ میں خود وہاں موجود ہوں. آپ اس ایمبینس کو, اس ماحول کو فیل کرنے لگ پڑے. آپ کو وہ در و دیوار کی موجودگی کا احساس بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ شہود شروع ہو گیا. اسی کو مکاشفہ کہتے ہیں. اب یہاں پہ آپ آنکھ کھلی, آپ نے کہا جی میں نے آج گنبد خضرا دیکھا مراقبے میں, لوگ کہتے ہیں واہ. ٹھیک ہے, آپ لگے رہتے ہیں, آپ لگے رہتے ہیں گنبد خضرا کے بعد آپ اس کے اندر چلے جائیں. ٹھیک ہے, ریاض الجنہ میں آپ جا کے نوافل ادا کر رہے ہیں, مثال مراقبے میں ہی بیٹھے بیٹھے وہ جو بھی ذہن میں ہے وہ وہاں پہ آپ پرفارم کر رہے ہیں. تو یہ درجے کہلائیں مراقبے کے. اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ بھئی یہ ساری بات کیا ہے, اب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مطلب روضہ اقدس پہ آپ ان کے ساتھ ایک ذہنی ارتباط محسوس کرتے ہیں کہ جی میں وہاں بیٹھی درود و سلام پیش کر رہی ہوں. پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی شفقت فرمائی گئی ہے, کوئی بات آپ کو انسپائر کی گئی ہے. اب آپ اس بات پہ غور کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ ادھر سے ایک میسج ملا تھا آپ کو کہ یہ کرو. اب یہ درجہ مراقبے کا درجہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. حضور مرشد کریم نے یہ ساری باتیں دیکھیں کیسے سلیس انداز میں واضح کر دی. ہم اتنے شریف لوگ ہیں کہ ہمیں یہ بات ہی نہیں سمجھ آ کے دے رہی کہ وہ کیا فرما رہے ہیں.
سر ابا نے میرا سائیکولوجی کی بک ہے اس میں ایک وہ بتائی مشق کے جاگتے ہوئے سونے کی مشق کرنا, تو وہ کس طرح ہو جاگتے ہوئے سونے کی مشق؟
مطلب ہے بیداری میں خواب کے حواس کو انجوائے کریں, یعنی محسوس کریں کہ میں سویا ہوں. اب آپ ذرا سا رک جائیں, بہت توجہ سے ذرا یاد کریں, جب آپ سونے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ آرام سے لیٹ جاتے ہیں, تکیہ سیٹ کرتے ہیں, پنکھا چلا لیتے ہیں, لائٹیں آف کر لیتے ہیں, اور تکیے پہ سر رکھ کے اپنے ارد گرد سے آپ بے خبر ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں میں نے نیند کے عالم میں جانا ہے, میں نے سونا ہے, مجھے سونے دو. اگر کوئی آواز آتی بھی آپ اسے اگنور کرتے ہیں, رفتہ رفتہ آپ کے اوپر نیند کے حواس طاری ہو جاتے ہیں اور آپ کا جسمانی نظام معطل ہو جاتا ہے. اب آپ سانس تو لے رہے ہیں, جسمانی نظام کام کر رہا ہے, لیکن آپ ذہنی طور پہ کہیں اور ہیں. کہاں ہیں؟ خواب کی دنیا میں. یعنی لیل کے حواس طاری ہو گئے, لیکن یہ لیل کے حواس جو طاری ہوئے یہ بے شعوری کی کیفیت ہے, یہ غیر ارادی ہے, یہ غیر اختیاری ہے. اب اگر ہم اپنے شعور کو بیدار رکھیں یا کوشش کریں کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو نوٹ کریں, تو کیا ہوگا؟ آپ گویا سوتے میں بھی بیدار ہیں. اسی طرح بیداری میں سونا کیا ہے کہ آپ مراقبے کے لیے بیٹھے ہیں, آپ پوری طرح چوکنے ہیں, ساری آوازیں آ رہی ہیں, لیکن آپ کا دھیان اپنا آپ کے اوپر رات کے حواس تاری ہیں, یعنی آپ کی حسیات 70 گنا پہ کام کر رہی ہیں. یہ ہے اصل میں جاگتے میں سونا. اب آپ اس کے لیے توجہ کریں, اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جاگیں. اب اگر آپ 2-2.5 گھنٹے سوئے ہوں گے تو دن بھر میں آپ ہر وقت لڑکتے پھریں گے. نہیں, یہ آپ نے اس لڑکنے کو کنٹرول کیا اور اندر سے سوئے ہوئے, ذہن سویا ہوا ہے, شانت ہے, آپ روٹین کے کام بھی کر رہے ہیں. جب میں نے یہ ایکسرسائزز کی تو میری دیکھا دیکھی میرا بیٹا بھی کہنے لگا میں بھی کرتا ہوں. میں نے کہا کرو. تو وہ 3 دن لگاتار جاگنے کا تھا, 3 دن 3 راتیں لگاتار جاگنے کا پروگرام تھا. تو خیر اس نے شروع کیا, دوسرے دن مجھے کہتا ہے عجیب کیفیت ہے, میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو خواب شروع ہو جاتا ہے.
ایسا ہوتا ہے.
میں نے اسے کہا کہ بس جاری رکھو. کیا اب آپ سمجھے کہ دیکھیں جاگتے میں وہ کہتا ہے میں جو ہی آنکھ بند کرتا ہوں خواب شروع ہو جاتا ہے. تو یہ خوابوں کو دیکھنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ کیا آپ کو جاگنے کم سونا جو ہے, دیکھیں نا فقیری میں 3 باتیں کہی گئی, کم سونا, کم کھانا, کم بولنا. اب آپ کہیں گے تم خود تو سب سے زیادہ بولتے ہو. بات یہ ہے کہ جب دیکھیں وقت ہوتا ہے نا ایک چیز کو, میں نے کم بولنے کا بھی تو دورانیہ گزارا نا. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس سے میرے کانسیپٹس کلیئر ہوئے, تو اس کے بعد یہ آپ سب بہن بھائیوں کا یہ مجھ پہ مہربانی ہے کہ آپ کہتے ہیں اس سے بات سنو تاکہ ہمارے کانسیپٹس بھی کلیئر ہو جائیں. تو یہ جو آپ اس قسم کی باریک باتیں مجھ سے پوچھ لیتے ہیں, تو چونکہ میں مطلب مجھے حضور مرشد کریم نے ان مراحل سے گزارا اسی لیے تاکہ میں دوسروں کی مدد کر سکوں. تو یہ ایک نظام ہے ان کا بنایا ہوا. ठीक हो गया। तो ये बात समझ आ गई कि सोते में जागना और जागने में सोना क्या मतलब होता है। जी
जी सर, एक सवाल और पूछूं, ये कोई कर रहा नहीं कर रहे हैं सर।
जी
थैंक यू।
मुसलसल तफक्कुर और तवज्जो देने से ज़हन कायनाती लाशऊर में तहलील हो जाता है।
ज़हन का आगे क्या लफ्ज़ बोला?
ज़हन कायनाती लाशऊर में,
ज़हन कायनाती लाशऊर में तहलील हो जाता है। क्या कहा? यानी जब आप किसी नुक्ते पे मुसलसल गौर करते हैं तो ज़हन उसकी गहराइयों में उतरता चला जाता है। अब गौर करें, ये इनफरादी शऊर, फिर नौई शऊर, फिर कायनाती शऊर, फिर कायनाती लाशऊर। अब कायनाती लाशऊर में तहलील होने का मतलब है चौथे दर्जे के शऊर में, यानी शऊर अव्वल में अब तहलील हो गए या उससे हम आहंग हो गए? देखे ना, असल में हमने हम आहंग होने, वरना तहलील तो हम सारे ही हो जाते हैं। मरने के बाद सारे के सारे वहां वहीं तहलील हो गए।
बिल्कुल सर, ऐसा ही होता है।
अब अगर आप देखें ना, किसी बात पे मुसलसल गौर करते हैं तो पहले तो ये सामने की बातें नज़र में आती हैं, यानी उसका इनफरादी शऊर जो है वो खुलता है, फिर हमें पूरी नौ का शऊर हासिल होता है, फिर उसका कायनाती किरदार सामने आ जाता है, फिर ये समझ आती है कि कायनाती किरदार के पीछे कौन सा ज़हन है जो इससे ये किरदार अदा करवा रहा है। तो ये कायनाती लाशऊर हो गया। अब आप मिसाल देखें, पानी को आप देखते हैं, आप सिर्फ पानी देखते हैं। अब एक बंदा देखता है, कहता है पानी की तीन हालतें होती हैं, ठोस, माया, गैस। अब एक और बंदा कहता है, वो मजीद गौर करता है, कहता है नहीं, इसकी तो पांच हालतें हैं, ये हेवला भी है, ये रोशनी भी है। गौर करें, अब जिसने सिर्फ पानी देखा उसने क्या देखा, और जिसने ये पांचों हालतों को जहन में उभार लिया उसने क्या देखा? अब उसने कहा पानी की किस्में हैं, पानी भी एक नौ है। क्या कहा?
पानी नौ है,
नौ है। अब गंदे नाले का पानी, बारिश का पानी, चश्मे का पानी, मेडिकल स्टोर के एम्प्यूल में भरा हुआ पानी, क्या इनमें फर्क नहीं है? अब झील का पानी, गदला पानी, साफ पानी, अब हम नॉर्थ पोल पे अंटार्कटिका में जो पानी है, और जो बहरुल काहिल में पानी है, और जो हमारे कराची के नालों में पानी है, कोई किस्में हुई या ना हुई?
बिल्कुल सर।
अब इसी पानी की एक किस्म है पसीना, और इसी पानी की एक किस्म है पेशाब। गौर करें, क्या कर रहे हैं हम? गौर। तो हमें क्या पता चला कि पानी की नोए हैं। अब ये पानी का नोई शऊर आ रहा है आपको। फिर आप देखते हैं कि पानी कैसे बनता है, कैसे समुंदर में से बादलों की सूरत में उठता है, कैसे बारिश की सूरत में बरसता है, कैसे सारी जमीन पे नाली, नदियां, चश्मे, दरिया, नहरें, ये सारा एक निज़ाम है। बिजली बन रही है और ज़मीनें सैराब हो रही हैं, फसलें बन रही हैं। तो पानी का ये रोल क्या हुआ? मुसलसल गौर करते 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 आप देखते हैं इसका दूसरी अनवा से क्या ताल्लुक है। ये सैराबी का काम कर रहा है, ये तसव्वुरात का खौल है, यहाँ तक पहुँच गया ज़हन। फिर मजीद ऊपर जाते हैं तो पता चलता है कि यहाँ तो अल्लाह रब्बे करीम कह रहे हैं कि और उसने अपना अर्श पानी पे कायम किया, यानी ये पानी पे कंट्रोल ही अल्लाह का सारा तसर्रुफ है। اب آپ دیکھیں نا, ایک لفظ ہے, آپ نے ایک لفظ کہا کہ مسلسل غور و فکر کرنے سے, تفکر کرنے سے ذہن کائناتی لاشعور میں تحلیل ہو جاتا ہے. اب اگر میں نے آپ کو یہ چھوٹا سا ایک مثال کے طور پہ عرض کیا کہ لفظ پانی پہ غور کرتے 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 آپ کہاں تک آ گئے, اللہ نے قرآن میں کہا کہ میرا عرش پانی پر ہے, کیا مطلب ہے؟ اب جب آپ اس نقطے میں اور اتریں گے اندر, تو اللہ کا کنٹرول, اللہ کس طریقے سے پانی کے ذریعے چیزوں کے تصورات کو مظہر بنا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ شعور ڈیولپ ہوتے ہوتے کہاں تک آ گیا؟ آپ قرآن کی اس آیت, قرآن کی اس آیت کو سمجھنے کا شعور پیدا ہونا شروع ہو گیا. عرش کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کنٹرول. اور اللہ کیسے کنٹرول کر رہا ہے؟ وہ پانی کے ذریعے تصورات کو مظہر بنا رہا ہے. پانی ایک خول ہے. کیا کہا حضور قلندر بابا علیہ نے کہ ما تصورات کا خول ہے. اب ان ساری چیزوں میں جب آپ نے ان کو انٹر لنک کر لیا, تو مجھے بتائیے آپ کی فہم کا دائرہ بڑھ گیا کہ سکڑ گیا؟
بہت کھل گیا. آزاد.
اب دیکھیں نا, یہ تحلیل کا مطلب ہے کہ آپ کا ذہن اس درجے پہ پہنچ گیا کہ وہ کائناتی لاشعور میں گم ہو گیا. پھر جب آپ اپنی گمشدگی کی اطلاع پا کر خود کو دریافت کرنے کے بعد اس کے ساتھ ہم آہنگ کر لیں گے, تو کیا ہوگا؟ اب آپ پانی پیتے ہوئے پانی کے اصل کمالات کو جذب کریں گے اپنے اندر. اب سمجھ آیا کیا کہتا ہوں کہ آہستہ آہستہ پیا کرو؟
میں تو اس سے صرف ایک سرکل تک آ رہی تھی کہ آپ نے تو اس کو واقعی کائناتی لاشعور سمجھا دیا. سر میرے ذہن میں تو صرف ایک سرکل ہی آیا تھا بس, تو آپ نے ماشاء اللہ بہت ہی اچھا اسے ایکسپلین کیا.
دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ اسی طرح آدمی ایکسچینج آف تھاٹس کرتے کرتے اپنے تھاٹ کو ایوالو کرتا ہے. دیکھیں نا, میں نے حضور مرشد کریم سے یہ ساری باتیں پوچھی, جیسے آپ سوال پوچھ رہے ہیں میں نے ان سے پوچھے, انہوں نے جو جواب مرحمت فرمائے انہی جوابات کی روشنی میں میرا کانسیپٹس کلیئر ہوئے. انہوں نے بٹھا دیا کہ بھئی آپس میں بہن بھائی مل کے بیٹھو اور یہ جو بھی سوال تم سے پوچھیں تم ان کے جواب دے دیا کرو.
ہمارے لیے
ایسے ہی ہوگا نا. اب دیکھیں نا, حالات اور وقت کے ساتھ ساتھ اب ان کی صحت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. جیسے وہ میں نے کئی دفعہ یہ مثال عرض کی ہے کہ ایک حکیم نسخہ لکھ رہا ہے اور اس نے اپنے ایک بندے کو کہا کہ یار یہ ذرا اس کی تشریح مریض کو کر دو, تو وہ معالج کا اسسٹنٹ تو کہلا رہا ہے, لیکن کیا وہ معالج ہے؟ جواب ہے کہ وہ معالج نہیں ہے, وہ صرف اس نسخے کی تشریح کر رہا ہے یا اس کو ایکسپلین کر رہا ہے تاکہ مریض اس کے مطابق عمل کر سکے.
بالکل.
اب اللہ رب کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پورا نسخہ لکھوا دیا, جسے نسخہ کیمیا کہتے ہیں. اب کیمیا کہتے ہی کیمسٹری کو ہے, کیمسٹری چینج کر دینے والا نسخہ, لیکن ہم نے اس نسخے کی تشریح نہیں کی, نہ خود کی نہ کسی سے کروائی. جن سے کروائی انہیں خود نہیں پتا تھا.
سر وہی لاشعوری طور پر وہ نہیں سٹرونگ تھے سر.
ہاں وہ مطلب ہے شعوری طرزوں میں. دیکھیں نا, وہی جو ہے वही को समझने के लिए आपको लाशौरी तर्जों से आरास्ता होना पड़ेगा। जब भी कोई आदमी वही की शरा शौरी हदों में रह के करेगा तो वही समझ थोड़ी आएगी आपको। वही की ग्रैंडियर का तो अंदाजा हो गया कि शौर मरूम हो गया, उससे वाकिफ नहीं हुआ, उससे आशना नहीं हुआ। जब तक आप लाशौरी तर्जों को नहीं समझेंगे और लाशौरी तर्जों को समझकर अल्लाह के यानी कायनाती लाशौर में पहुंच के फिर जाके कहीं वही समझ आएगी। वही का ताल्लुक किससे है, शऊर से के लाशौर से या कायनाती लाशौर से?
लाशौर से सर।
कायनाती लाशौर से यानी वराय कायनाती गेम है ना भाई, अल्लाह की तरफ से पैगाम है तो अल्लाह तो सुप्रीम है, वो तो वराय कायनाती लाशौर हो गया। जी और कोई सवाल? ये बात वाज़े हो गई वैसे?
जी सर बहुत अच्छा।
जी
अच्छे
जी आपको क्या पहला सवाल कौन कर रहा था इससे पहले? जी इरशाद
सर छोटा सवाल है, इसके तीन हिस्से हैं। माँ यानी पानी, अल्लाह ताला ने एक पानी आसमान से बरसाया और एक पानी जो बरसा इंसान की आँख से, तो दोनों में मुतबर कौन है? और दूसरा ये कि जब इंसान दुख की शिद्दत में होता है और उसकी आँख से आंसू बरस जाते हैं तो वो उसका दुख कम हो जाता है, शिद्दत उसकी कम हो, तो उसका दुख
कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। जी अगली बात कर लें फिर बताता हूँ।
वो एक अल्लाह वाले का कौन सा के जहाँ आपको आपकी इबादत नहीं पहुँचाती वहाँ आपको आपके आंसू पहुँचा
दे? ये मुझे एक बात बताए, नहीं मैं नहीं इससे इत्तफाक करता। ये पहले तो ये समझ लीजिए कि ये आंसू का निकलना क्या है। देखें आपको एक इत्तला मिली, इत्तला जो है वो वहमा कहलाती है, वहमे से वो ख्याल बनी, ख्याल से वो तसव्वुर बना, तसव्वुर से वो एहसास बना, एहसास के नतीजे में आपके अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हुई, उन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के नतीजे में आपके अंदर केमिकल इम्पल्सेस जनरेट हुई, फिर उसके बाद मोटर इम्पल्सेस हरकत में आए और एक चीज का अमली मुजाहिरा हुआ। अब आपने एक बुरी खबर सुनी, बुरी खबर सुनी या आप अपनी सोचों में एक नेगेटिव थॉट को ले आए और उसको इत्तला बनाकर आप उसे महसूसात के दर्जे पे लाए, उसके नतीजे में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ने क्या किया, आपके अंदर केमिकल इम्पल्सिस पैदा हुए और केमिकल इम्पल्सिस के नतीजे में आपके टीयर ग्लैंड्स में आंसू पैदा हुए, स्लाइन वाटर पैदा हुआ, नमकीन पानी पैदा हुआ, जब ज्यादा जोर पड़ा तो वो पानी आंखों में बह गया। अब इसी तरह खुशी के आंसू भी होते हैं। अब ये जो हमें लगा दिया अपने आमाल ठीक करने के बजाय रोने पीटने पे और अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा के रो रो के दुआएं करने में, तो असल में मैं कहता हूं कि भाई ये तो हमें अल्लाह के निजाम से दूर कर दिया। अल्लाह कह रहा है कि भाई आप मेरी दी हुई सलाहियतों को इस्तेमाल करके इस्तकामत के साथ, सबर के साथ, अब सबर और शुक्र दो लफ्ज इस्तेमाल हुए, हमने उनका क्या हशर कर दिया? यही हशर हमने दुआओं के साथ किया। अब एक रिक्कत होती है, अल्लाह को याद करते हुए आपके अंदर गुदाज पैदा हो गया, हजूर अलैहिस्सलाम के हवाले से बात करते हुए आपके अंदर गुदाज पैदा हो गया और ये सारा केमिकल प्रोसेस आपकी आंखों से बह रहा है, मैं उसकी ताईद करता हूँ। कि वो तो बिल्कुल सही है।
सही।
क्यों? क्योंकि वो रोने का अपनी जाती गर्जों का रोना पीटना नहीं है। मैंने देखा कि लोग पीरो मुर्शिद से मिलते हैं, उनसे मिलते हैं तो उनकी आंखों से पानी बह रहा होता है, आंसू बह रहे होते हैं। अब वो खुशी के आंसू हैं कि गम के आंसू हैं? नहीं, वो मोहब्बत के, प्यार के, अकीदत के आंसू हैं।
जी सर।
फर्क समझ आ गया आपको?
जी।
अब आ जाए आखिरी जिस चीज से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। आपका बच्चा आपसे जब बात करे रो के बात करे, आपका बच्चा आपसे जब बात कोई बात मांगे रो के मांगे, मुझे गाड़ी दिला दो, मुझे कॉपी दिला दो, मुझे खाना दे दो, जरा गौर करें आप कितनी देर बर्दाश्त करेंगे। और अगर बच्चा खुश मिजाजी से, प्यार से, मोहब्बत से कहे अम्मी खाना तो दे दो, हैं?
जी।
फर्क समझ आ गया आपको?
जी सर।
ये जिस पटरी पे मुसलमानों को चढ़ा दिया गया है कि रोना पीटना मचाए रखो अल्लाह को, अल्लाह कहता है खुश रहो, आप हैं कि रोने से ही फुर्सत नहीं है। रोना पीटना तो आपको चाहिए अपने करतूतों पे। देखे ना, हमें अपनी गलती का एहसास हो जाए उस पे रोना जायज है, जरूरी है। लेकिन रोने से क्या हुआ? एक दफा किसी साहब ने कहा जी, उन्होंने ये बात सुनी तो वो बड़े रोए, आगे से अब्बा ने कहा तो फिर क्या हुआ? हैं? क्या इस्लाह हो गई? यानी मतलब उन्होंने सिर्फ इतना कहा, फिर क्या हुआ? क्या मतलब था? उन्होंने हमारे शऊर को किस सलीके से इस तरफ मोड़ दिया कि भी निरा रोने से क्या हुआ, थोड़ी देर वो रोया पीटा, उसके बाद जाके फिर वही कर रहे। क्या वो गलती दुरुस्त हो गई जिस पे वो रोया था?
नहीं नहीं सर।
बात समझ में आ गई आपके?
जी सर, आ गई।
ये बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस हैं। जब आप अल्लाह को 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाली हस्ती तस्लीम करते हैं, और जब आप ये अपने इनर में महसूस करते हैं कि वो मुझे देख रहा है, तो आपको कैसा गुले गुलजार चेहरा दिखाना चाहिए कि अल्लाह को, यानी आप खुश रहें। माँ के खुश करने का सबसे आसान तरीका क्या है? माँ को खुश करने का सबसे आसान तरीका ये कि बच्चा खुश रहे। बच्चे को खुश देख के ही माँ खुश होती रहती है। जरा सा गौर करके देख लें, जुमला कहा है मैंने?
जी सर।
मतलब है आप, हम जो साहिब औलाद लोग हैं, हमें सबको पता है कि बच्चा खुश होता है तो माँ बाप के चेहरे वैसे ही मुस्कुरा रहे होते हैं। बच्चा रो रहा हो तो माँ के चेहरे पे तनाव देख लीजिए। तो अल्लाह के साथ हम ये क्या कर रहे हैं? अल्लाह हमें सारी आसाइशें दे रहा है, उसने हमें जिंदगी अता फरमाई, उसने हमें वजूद बख्शा, हमें शुक्र गुजारी के साथ उसकी इन दी हुई सलाहियतों को, नेमतों को खुश होकर इस्तेमाल करना चाहिए या रोना चाहिए हमें?
खुश होकर इस्तेमाल करना चाहिए।
और उसका शुक्र करना चाहिए या कुफरान करते हुए यही कहते रहना चाहिए, नहीं ये क्या दिया और दे? जरा टोन में फर्क देख लेना। और फिर रोना के जी अल्लाह नहीं दे रहा, शिकवे करना, गिले करना, और फिर ऊपर से रो रो के अपने गुनाहों की माफियां मांगना, और फिर वही गुनाह करते चले जाना, ये कौन सा तरीका है? खुदा के वास्ते कहीं पैर पकड़ो, कहीं ब्रेक पकड़ो। माफी चाहता हूँ, कोई ज्यादा ही बोल गया।
नहीं सर, मैंने पढ़ा था तो मैंने पूछ लिया।
ये जो आप आपने मुर्शिद करीम का कहीं इस तरह का कोई बात पढ़ी आपने?
नहीं सर, वैसे यही सुनते आए ना कि वो
भाई आप जो सुनते आए हैं उसको एक तरफ अब रख देना। जी
ठीक हो गया सर,
बहुत शुक्रिया जी इसे ठीक करने का।
सही।
जी जनाब,
टाइम तो हो गया सर।
चलें कोई बात नहीं, अगर किसी के जहन में कोई सवाल है तो फरमा दें।
वरना सर, अकीदे और अकीदत में क्या फर्क है?
ये दोनों ही गिरा को कहते हैं। देखे ना, अकीदा का मतलब है कि मैं ये एक बात मानता हूँ और ये मेरे जहन में गिरा लग गई, इसको अकीदा कहते हैं।
किसी पे जमा रहना चाहिए,
ठीक है। अब किसी से आपको अकीदत हो गई तो इसका मतलब है वो गिरा बन के आपके जहन में लग गया, अब आप उसके खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकते, उसको एनालाइज नहीं करेंगे आप। काफी हो गया जी?
जी जी सर, काफी हो गया।
खुश रहिए, अल्लाह हाफिज।
थैंक यू सो मच सर।
बहुत शुक्रिया।